तो आज हम लोग का टॉपिक है रसायनों से जीवन, एक अवैज्ञानिक विचार। तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में क्या विचार है जीवन की उत्पत्ति के विषय में? न्यू नए विद्यार्थीगण, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फ्रेश फ्रॉम प्लस टू, अभी प्लस टू से पढ़ के आए, एग्जाम पास करके आए, क्या विचार दिया गया है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कोई बताएंगे? निकाल दिया है टॉपिक सिलेबस से तो कोई बोलता नहीं, पढ़े लेकिन अंदर नहीं लिए। तो आपको पता है कि ऐसा विचार है कि रसायनों से जीवन उत्पन्न होता है कि नहीं? तो कितने लोग इस विचार से सहमत नहीं है कि ये जीवन की उत्पत्ति रसायनों से नहीं होती है? कोई सहमत नहीं है। इसका मतलब कि सब लोग सहमत हैं कि जीवन की उत्पत्ति रसायनों से ही होती है, ठीक है? ओके। तो जीवन की उत्पत्ति रसायनों से कैसे होती है, आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे? क्या थ्योरी है जीवन से रसायनों की उत्पत्ति की, कैसे होती है? आप सब सहमत तो हैं, पर क्यों सहमत हैं तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। कुछ रीजन तो देने पड़ेंगे, कुछ कम से कम रीजन छोड़िए, तो मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ केवल, कैसे कैसे हुआ जीवन से, ये तो बताना पड़ेगा। बताइए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कुछ पनिशमेंट आपको मिलेगा, कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसी बात। जस्ट टेल व्हाट यू थिंक। क्या मौन व्रत धारण किए हुए हैं क्या सब लोग कि बताना नहीं कुछ, ये चक्कर क्या है? कुछ नहीं पता इसके बारे में, जीवन की उत्पत्ति रसायन से हुई है, हुई है नहीं हुई है, अरे जिससे हुई हमें क्या पड़ी है, ये भी एक विचार है। केमिकल से हुई होगी, बिना केमिकल से हमें इसकी क्या पड़ी है? हमें डिग्री लेने के लिए आए प्रभु जी, यहाँ पर डिग्री लेकर के जाना है, जॉब मिल जाएगा, पैसे कमाने से हुई है, ये भी एक विचार है। जनरल यही विचार होगा, करेक्ट, कि चाहे रसायन से हुई चाहे नहीं हुई, हमें क्या लेना देना। तो फिर मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हम सबको बहुत कुछ लेना देना है। ये जीवन की उत्पत्ति का विषय केवल ऐसा नहीं है कि ये बस ये पीएचडी लोगों का विषय है सोचने का कि कैसे उत्पत्ति हुई है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब कि हमारे हमारा ओरिजिन क्या है, ये संसार का ओरिजिन क्या है, ये हमारे हर जीवन के हर पहलू को छूता है ये विषय। आप कौन हैं ये पहचान, ये संसार का आपके साथ क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब विषय जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सब इस विषय से संबंधित हैं कि जीवन की सृष्टि कैसे हुई है। क्योंकि यदि जीवन की सृष्टि, जैसा कि एक विचार है कि रसायनों से हुई है, यानी उसके पीछे कोई एक विशेष हेतु नहीं है, तो फिर वर्तमान में अपनी बुद्धि लगा करके अनुभव से जो हम सोचते हैं कि जैसा हम सुखी से रह सकते हैं वैसा रह सकते हैं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब आपस में तालमेल कर रखें, अपने को इतना नियमित रखें कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, और ऐसा रह के मैक्सिमम एंजॉयमेंट जैसे भी कर सकें वैसा जिए, तो वो एक तरीके से लक्ष्य माना जाएगा। लेकिन यदि ये विचार माना जाता है कि एक उत्पत्ति करता है, एक क्रिएटर है, तो फिर तुरंत आता है ये प्रश्न कि तो फिर एक कोई कारण भी होगा ये बनाने का, तो फिर वो कारण को समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुरूप जीना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल हमारे जीवन की दिशा को बदल देगा। तो इसलिए ये विषय तो महत्वपूर्ण है सबके लिए, ऐसा नहीं केवल ये टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए है, पास होने के लिए गया एग्जाम, या हमारे जीवन के हर पहलू से संबंधित है। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं जो मैंने बात कही? तो क्या हमें डिस्कस करना चाहिए टॉपिक? एग्रीड? ओके। तो करीब 100 साल पहले ये विचार प्रारंभ हुआ वैज्ञानिकों के अंतर्गत कि जीवन की उत्पत्ति रसायनों से हुई होगी। उससे पहले सामान्य, ये पाश्चात्य जगत की बात कर रहा हूं, ये विचार कहां से उत्पन्न हुआ? पाश्चात्य जगत से उत्पन्न हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उससे पहले कि भगवान है, वो क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न में क्रिश्चियनिटी, तो भगवान है ये सब विचार था। लेकिन 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने जब माइक्रोस्कोप्स निकाले और कुछ प्रगति की, तो उन्होंने एक सेल के स्ट्रक्चर को देखा, कोशिका, और देखा कि उस समय के माइक्रोस्कोप्स बहुत प्रिमिटिव थे, सरल थे। तो उसमें देखा कि बस एक कुछ एक गोल चीज है और उसके अंदर कुछ चीजें हैं भरी हुई हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसलिए उनको विशेष रूप से ऐसे डार्विन जैसे साइंटिस्ट को ऐसा विचार आया, संभावना लगी कि अगर सेल है जिसके हम सब बने हैं, तो वो इतना सिंपल है, तो हो सकता है कि केमिकल्स आपस में मॉलिक्यूल सब मिल करके एक सेल बन गए हों, और फिर उससे ये सब सेल बड़े होके होते ज़्यादा होते वृद्धि करते हुए आदमी बन गया होगा। तो दिस इज लूजन,
वो तो भी हुई है कनेक्शन आपका,
उससे तो ज्यादा हो रहा है,
इसका कोई मतलब नहीं है, तो अभी भी हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। इसी के प्रॉब्लम,
हरे कृष्ण, आ तो रहा है लेकिन बीच में बोले यार, ठीक है बोलने दो कोई बात। तो आप में से सेल के स्ट्रक्चर को कितने लोग पढ़े हैं? पढ़े होंगे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, प्लस टू में सब लोग पढ़े होंगे। तो वर्तमान में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सेल के स्ट्रक्चर की, तो उसमें एक सेल वॉल होती है, अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग डीएनए आरएनए के द्वारा बहुत कुछ एंजाइम्स बनते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे अभी हमारी वैज्ञानिक खोज आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि ये जो कोशिका है ये कोई एक साधारण एक बैग नहीं है जिसमें कुछ केमिकल भरे हुए हैं, बल्कि ये तो पूरा एक यूनिवर्स की तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ही इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के फंक्शंस चलते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, बहुत सिस्टमेटिक सब काम चलता है, फंक्शन चलता है। आई थिंक मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
थोड़ा पास आ जाइए आप लोग।
तो फिर ये प्रगति के बाद अभी ये विचार के ऊपर कि ये सेल अपने आप बन गया होगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं कि इतना जो कॉम्प्लिकेट चीज है वो कैसे इवोल्यूशन से, डार्विन का सिद्धांत इवोल्यूशन जो बेस है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी पढ़ी होगी आपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कोई बताएंगे? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? हाँ, हाँ,
अपने को प्रूव कर सकी कि वो कैपेबल है या एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को चेंज कर पाई, सिलेक्टेड होने आगे इवोल्यूशन नरी डेवलपमेंट और बाकी के सभी मारे।
ठीक है, तो इसकी इस थ्योरी की एक प्रारंभिक आवश्यकता है कि नेचुरल सिलेक्शन तभी प्रारंभ हो सकता है जब कोशिका या जीव जनन जनरेशन की स्थिति में हो, क्योंकि तभी तो अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न होंगी, तभी तो सिलेक्शन करने की बात आएगी, करेक्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी स्टार्ट होती है वहां से, उस स्तर से जहां पर सेल्फ रिप्लिकेशन शुरू होता है, कोशिका का स्वयं विभाजित होना बढ़ना शुरू होता है, उसके आगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी काम करती है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कि वो स्थिति से पहले क्या हुआ, जब सेल एक से दो बनना शुरू हुआ, सेल्फ रिप्लिकेटिंग सिस्टम, उससे पहले क्या हुआ, वहां तक कैसे पहुंचे, इसकी थ्योरी क्या है, कौन बताएंगे, आप बताएंगे?
अजीव जननवाद।
हैं जी?
अजीव जननवाद।
हाँ, अजीव जननवाद क्या है वो?
जीव नहीं थी और
हाँ
जीव जैसा
हाँ
जो अपना
हाँ यस। तो कि बहुत बहुत साल पहले बिलियन बिलियन ना 4.5 बिलियन अर्थ का एज एस्टिमेट किया गया है, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो एक क्या था, प्रिमोर्डियल सूप। प्रिमोर्डियल सूप से पहले एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार की गैसें थी और इलेक्ट्रिक थंडर बोल्ट और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो जो गैस थी उसके अंदर रिएक्शन हुए और जो हमारे पहले के समुद्र थे लाखों सालों के अंतराल के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, जिसको बोला गया प्रिमोर्डियल सूप। सुना है आपने अब नाम प्रिमोर्डियल सूप, क्या कहते हैं यहाँ पर आपकी गुजराती की टेक्स्ट बुक में इसको, आप लोग गुजराती मीडियम पढ़े होंगे ना, तो क्या बोलते हैं प्रिमोर्डियल सूप को यहाँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पढ़े भी हैं कि नहीं, ये पता लगाने के लिए कि ये सिलेबस से निकाल तो नहीं दिया, तो अच्छा होगा फिर। एनीवे, प्रिमोर्डियल सूप समझ रहे हैं? तो पहले सब जो केमिकल्स रसायन का जो मिश्रण है उसे प्रिमोर्डियल सूप नाम दिया गया, और फिर धीरे धीरे उसमें से अब रिएक्शन होके सिंपल केमिकल से कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स बने, एमिनो एसिड बने। एमिनो एसिड का नाम सुना है? शायद मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन ये बेसिक जो हम बताएंगे वो तो मैथमेटिक्स में जितना आपने प्लस टू में पढ़ा है वो भी जान सकते हैं। एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे एमिनो एसिड बने और फिर एमिनो एसिड्स प्रोटीन बने और फिर प्रोटीन से किसी तरीके से फिर एक सेल बन गया और फिर उस सेल में अंदर किस तरह से जनन करने की शक्ति आई और फिर वो एक से दो सेल, दो से चार और इस प्रकार से हो गया। तो ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है। और प्रारंभ में कैसे वो रैंडमली रैंडम बाय चांस केमिकल रिएक्शन से वो प्रोटीन तक बना और फिर प्रोटीन और सेल बनने के बाद सेल्फ रिप्लिकेशन के बाद फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अनुसार धीरे धीरे आदमी बन गया। तो हमारी टेक्स्ट बुक में ये ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ये थ्योरी सब प्रूव्ड है, लेकिन आपको पहले ये समझना चाहिए कि ये केवल एक विचार है, ये कोई प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। जैसे आप सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि केमिकल ऐसे मिले और फिर उसके बाद एमिनो एसिड बन गए, फिर प्रोटीन बन गए और फिर एक सेल बन गया, पर कैसे, क्या स्टेजेस हैं, कैसे बना, तो वो सब स्टेजेस को एक्सप्लेन बिना किए बिना हम लोग नहीं कह सकते कि ये कोई प्रूव्ड थ्योरी है। बट एनीवे, ये एक सपोजिशन है, एक हाइपोथेसिस है जिसको एक थ्योरी के रूप में प्रकट किया जाता है हमारे। लेकिन बहुत बड़े प्रश्न हैं कि इवोल्यूशन मतलब क्या, कि उसके पीछे कोई ब्रेन नहीं है, जड़ पदार्थ अपने आप ऑर्गेनाइज हो रहा है सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड चीज में। ये इवोल्यूशन थ्योरी का केंद्र दर्शन है कि कोई डिजाइनर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको संचालित करने वाला, प्रोग्राम करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, सुपरवाइज करने वाला नहीं है, बल्कि जड़ पदार्थ स्वयं अपने आप ये सब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम अभी जाने हैं कि सेल, एक सेल भी हमारी जितनी सोच थी पहले उससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए कैसे वो अपने आप इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हुआ होगा, ये एक प्रश्न है। जैसे कि सिंपल अगर ये एक रिकॉर्डिंग मशीन है, तो ये रिकॉर्डिंग मशीन को समझना कि ये इवॉल्व हुआ है अपने आप इस स्टेज तक, प्लास्टिक, लोहा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चिप्स इसके अंदर जो हैं, वो सब धीरे धीरे इवॉल्व होकर के अपने आप इस स्टेज तक पहुंच गए कि इसके अंदर ऐसी फैसिलिटी डेवलप हो गई है कि अभी ये रिकॉर्ड करता है और फिर वो चीज़ आगे फिर प्ले होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कितने सारे स्टेप्स बने होंगे, चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ प्लास्टिक से इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने सारे स्टेप्स जरूरी हैं। प्लास्टिक को बनाना पड़ेगा, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स को सबको बना करके उसका सब प्रॉपर साइज, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन सेट करने के लिए सबको करके, और फिर एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ सोच करके इसको बनाना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल है ये सोचना कि ये एक छोटा सा जो रिकॉर्डिंग मशीन है, ये प्लास्टिक तत्व अपने आप मिलकर के कंबाइन करके धीरे धीरे ये इस स्टेज पे पहुंच गए होंगे। मुश्किल है कि नहीं है इसको सोचना कि अपने आप बिना किसी इंजीनियर के डिजाइन किए, बिना सोचे कैसे होगा, ये अपना आप पहुंच गया। तो एक कोशिका का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेट होता है, इसको बताने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे, पहले एक या दो उदाहरण, क्या आपको पता लगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही हम लोग लें, या इससे पहले उदाहरण लेते हैं, डीएनए गायरेस एक एंजाइम होता है, जानते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, तो डीएनए गायरेस क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया लें इसीशिया कोलाई, तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक लूप फॉर्म में होता है, लूप फॉर्म। तो जब रिप्रोडक्शन होना होता है, जनन, तो क्या करना पड़ता है कि जो डबल हेलिक्स है इसको खोलना पड़ता है, अनकॉइलिंग, है ना। तो ऑलरेडी इतने छोटे सेल के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर को रखने के लिए ऑलरेडी बहुत कॉइल्ड होता है अंदर, और जब इसको खोलना पड़ता है, जैसे आप रस्सी लेते हैं, रस्सी उसको जब आप ऊपर से उसके छोड़ पकड़ करके ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, पूरा गुत्था बन जाता है नीचे, है ना, इलज जाता है, ऐसे नीचे खुलता नहीं है, सुपर कॉइलिंग हो जाता है। तो ऐसे ही डीएनए जब वो ऐसे ऊपर से खुलता है तो नीचे सुपर कॉइलिंग हो जाता है, उसके वजह से सब गांठ लग जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो उसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम डीएनए गायरेस काम करता है कि जब गांठ लग गई है तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, प्रोटीन स्ट्रक्चर को काटेगा, नीचे वाले को ऊपर लेके आएगा और फिर नीचे वाले जो उसको दोबारा से जोड़ देगा। तो ये काम करता है डीएनए गायरेस। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है। अभी डीएनए गायरेस भी एक एंजाइम, और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन कहां से बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बनाने का यंत्र है, मशीन है, वो न्यूक्लिक एसिड्स। सभी प्रोटीन्स कौन बनाते हैं, सब डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो और डीएनए के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है ये प्रोटीन डीएनए गायरेस, डीएनए की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है ये एंजाइम, और एंजाइम बनने के लिए जरूरी है डीएनए। तो फिर कौन सा पहले बना होगा, जब तक एंजाइम नहीं होगा तब तक डीएनए ने आगे प्रोटीन नहीं बनाया होगा, और जब तक प्रोटीन नहीं बना होगा तब तक डीएनए कैसे काम करेगा। तो इस तरह से अनेक समस्याएं खड़ी आती हैं। तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर अनेक प्रकार से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको वैज्ञानिकगण एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि कैसे ये सिंपल इवोल्यूशन से ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो साधारणतः हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए आते हैं जिसके वजह से बताया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि लाइफ केमिकल से आई है। जैसे एक है कौन सा, स्टैनले मिलर्स, और दूसरा एक सिडनी फॉक्स। तो ये दो विशेष रूप से हमको बताते हैं जैसे कि ये प्रूफ हैं कि केमिकल से आए हैं। तो मिलर, उन्होंने क्या किया कि एक चैम्बर के अंदर गैसेस को लिया और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और फिर उसकी जो चैम्बर की वॉल है उसके अंदर कुछ एक कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो गया, जिसको एनालाइज किया तो वो देखा वो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड थे, तो उन्होंने उद्घोषणा कर दी कि मैंने अभी ये प्रूव कर दिया है कि इस तरीके से प्रिमोर्डियल सूप से वो लाइटनिंग होकर के वो ये सब केमिकल्स बने हैं। लेकिन यदि उसको आप ध्यान से स्टडी करें उस एक्सपेरिमेंट को, तो वो एक साधारण क्रिया है जिसके द्वारा सभी प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, वो सब प्रकार के एमिनो एसिड बनते हैं, पॉइजनस एमिनो एसिड भी बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो यानी इवोल्यूशन के लिए हानिकारक हैं, जो इवोल्यूशन के विपरीत हैं, ऐसे एमिनो एसिड बने। सभी एमिनो एसिड्स हमारे इवोल्यूशन में काम नहीं आते, लिवर रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें से केवल कुछ ही काम आते हैं। लेकिन स्टैनली के एक्सपेरिमेंट में सब प्रकार के एमिनो एसिड बने, तो वो ये कहना कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइफ ये इवोल्यूशन से लाइफ आई है, ये तथ्य नहीं है। उसी प्रकार से फिर सिडनी फॉक्स ने क्या किया कि एमिनो एसिड्स को 280 डिग्रीज पर गर्म किया और फिर उसने देखा कि कुछ प्रोटीन्स बन गए हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स बहुत प्रिमिटिव थे और मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते थे। अगेन ये रिएक्शन से कैसे इवोल्यूशन प्रूव होता है, नॉट क्लियर। तो इसलिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे बुक्स में लिखे जाते हैं कि इससे इवोल्यूशन प्रूव हुआ, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यस साइंटिस्टों ने ऐसा कर दिया, लेकिन ये तथ्य नहीं है। तो जो हम साधारण रूप से संसार में ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, सिस्टमेटिक चीज देख रहे हैं, तो एक साधारण हाइपोथेसिस यदि हम लेकर के चलें और फिर इसको एग्जामिन करें कि ये जो हम मॉडल लेके चल रहे हैं कि मैकेनिस्टिक मॉडल, सब कुछ अपने आप, जड़ पदार्थ अपने आप ऑर्गेनाइज होकर के जीवन में बन जाते हैं, उसकी जगह जिससे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, उसकी जगह यदि हम ये हाइपोथेसिस लेके चलें जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन के अनुसार भी सही है, जैसे हमने देखा ये रिकॉर्डिंग मशीन है तो उसको बनाने के लिए एक इंटेलिजेंट आदमी बनाया है, एक छोटे से एयरप्लेन को बनाने के लिए एक इंटेलिजेंट आदमी बनाता है, तो उसी प्रकार से ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स है इसको बनाने के लिए एक इंटेलिजेंट व्यक्ति डिजाइनर है, ऐसी हाइपोथेसिस कम से कम ले सकते हैं। हाइपोथेसिस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप अपनी हाइपोथेसिस से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरी हाइपोथेसिस के लिए ओपन होना चाहिए, ये साइंटिफिक व्यू है। तो लेकिन साइंटिस्ट लोग स्टबॉर्न हैं अधिकतर, नॉट सब, अधिकतर में से, कि नहीं ये हम लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर इस हाइपोथेसिस पे काम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि यदि ये हाइपोथेसिस भी हमने ले ली और इस पे काम करना शुरू भी कर दिया तो हमारी पूरी जो साइंस का आधार है वही डगमगा जाएगा। तो अगर आप साइंस की हिस्ट्री में जाएं तो, और आज तक भी वो चला आ रहा है, तो बेसिकली अंतःकरण में ये विचार है कि साइंस का ये कार्य है टू प्रूव दैट रिडक्शनिस्ट थ्योरी, कि लाइफ और ये सब यूनिवर्स ये सब सिंपल फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल लॉज से अपने आप बना है और इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, इस बेसिक प्रिमाइस को लेकर के साइंस आगे बढ़ी है। इसलिए इस हाइपोथेसिस को स्वीकार करना उनको बहुत खतरनाक लगता है कि नहीं ये सब हम सब हमारा सबका भविष्य खत्म हो जाएगा, साइंस का भविष्य खत्म हो जाएगा यदि हम मान लेंगे कि भगवान है, यदि ये प्रूव हो जाएगा भगवान है फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे फिर। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जब वैज्ञानिक गण अपनी थ्योरी से अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे अगेन नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन बोलना आसान है कि नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का मतलब अगर आप उसको थ्योरी कह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि एक अलग अलग जातियों में से कौन सी जाति सिलेक्ट हुई, क्यों नेचर ने वो कौन सी जाति को सिलेक्ट किया और क्यों किया, क्या एडवांटेज थी उसकी हर स्टेप पर। नहीं तो ये कहना कि नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है ये उतना ही इलॉजिकल है, यदि आप ये मानते हैं कि भगवान को मानना इलॉजिकल है तो ये उतना ही इलॉजिकल है। साइंस की दृष्टि से ये भी ऐसे ही है, कोई बिना प्रूफ के बिना स्टेप्स को बताए है। तो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स यू हैव टू टेल व्हाट इज सिलेक्टेड फॉर व्हाट, कोई चीज सिलेक्ट हुई क्यों सिलेक्ट हुई किस लिए स्टेप्स क्या थे, तो वो सब हमारे पास कोई जानकारी नहीं दी। फिर अंततः वैज्ञानिक गण, तो हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वो भी तब शुरू होती है जब सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्टेज आ जाती है उसके बाद से, समझ रहे हैं थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उससे पहले क्या एक सेल बनने तक की स्टेज पे हम कैसे आए, एक सिंपल सेल, उसके बाद तो रिप्लिकेशन शुरू होएगा। सिंपल सेल कैसे बना, पहला सेल, तो एक सिंपल सेल जो हम लें, एक बैक्टीरिया सेल भी, तो साधारणतया एक सेल उसके अंदर लगभग 2000 प्रोटीन्स होते हैं एक सेल के अंदर। तो अभी ये 2000 प्रोटीन तक पहुंचने के लिए कैसे आए, तो जनरली साइंटिस्ट बोलते हैं ये बाय चांस आए, रैंडमली आए, रैंडम रिएक्शन से ये प्रोटीन्स बन गए। तो हमने देखा प्रोटीन्स किस चीज से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, सो 20 अमीनो एसिड्स। और जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं तो वो लगभग 300 अमीनो एसिड्स मिला करके एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। तो इस प्रकार से एक प्रोटीन बनने की जो संभावना है सब प्रकार के कॉम्बिनेशन से, 20 अमीनो एसिड्स हैं और 300 अमीनो एसिड्स की चेन का एक प्रोटीन है, तो एक प्रोटीन बनने की जो ऑड है, ऑड संभावना है, वो कितनी है, 20^300:1, इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से एक प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन मतलब पर्टिकुलर चेन, पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है 300 अमीनो एसिड्स का, वो 20 अमीनो एसिड्स में से उसकी संभावना कितनी है, 20^300:1 संभावना है। इतने सारे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उसमें से हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रोटीन। समझ में आ रहा है ये बात, ओके। तो वो एक प्रोटीन प्राप्त करने की ये संभावना है, तो 2000 प्रोटीन प्राप्त करने की संभावना तो वो कितनी है, सो उससे पहले ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है, मान लीजिए ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर का एक कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस का कोई प्रोटीन है, तो एक अलग अलग सीक्वेंस वाले प्रोटीन भी, अमीनो एसिड्स के अलग अलग सीक्वेंस भी एक ही प्रोटीन का फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। सीक्वेंस अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी एक ही फंक्शन करते हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा और रिड्यूस कर देते हैं हमारे चांसेस को। तो 20^300 की जगह 10^10 से 20 मान लेते हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन। और 10^20 कॉम्बिनेशंस के बाद फिर 2000 प्रोटीन्स, सो 10^40,000 चांसेस हैं एक सेल के बनने के, 10^40,000:1 और चांसेस आर देयर टू गेट वन सेल, यानी इतनी सारी संभावनाओं में से एक संभावना। अभी जैसे हेड एंड टेल्स, तो हेड एंड टेल्स, टेल आएगा कि हेड, इसकी हेड आएगा कि इसकी संभावना कितनी है, यदि आप एक सिक्के को छालेंगे तो 50% संभावना है। अभी ये प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी है, इसको आप कैसे यूज करेंगे, इसको आपने बोल दिया 50% प्रोबेबिलिटी है, आप इसको यूज कैसे करेंगे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं 50% प्रोबेबिलिटी से कहना क्या चाह रहे हैं आप, कि जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो दो बार उछालेंगे तो उसमें से एक बार हेड आएगा ही, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, 50% प्रोबेबिलिटी मींस व्हाट, हाँ, तो उसके आप प्रैक्टिकली क्या यूज किया उसका, वो हेड आएगा टेल आएगा दैट्स ओके, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी है उसका यूज क्या है, उसका क्या यूज है, उसका कुछ यूज नहीं है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज विदाउट यूज। यस, हाँ, थोड़ा पास पहुंच रहे हैं आप। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या दिखाता है, ये कोई कारण नहीं दिखाता है, ये एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न दिखाता है, स्टैटिस्टिकल पैटर्न दिखाता है। तो जब हम कहते हैं कि हेड और टेल्स है, इसमें से हेड 50% प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है कि यदि आप 1000 बार सिक्का उछालेंगे और हर बार नोट करेंगे कि हेड आया कि टेल आया, उसको ग्राफ में लोकेट करेंगे, हेड टेल 1000 बार या ऐसे बहुत बार उछालने के बाद जब आप एक पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1000 बार में से 500 बार हेड आया और 500 बार टेल आया। इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस इवेंट में, जो इवेंट रिपीटेड हो रही है, रिपीटेड करनी है, उसके पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है प्रोबेबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड, ऐसा इसका मतलब नहीं है कि एक बार उछाला तो दो बार उछाला तो उसमें से हेड आएगा, जरूरी नहीं, दोनों बार हेड आ सकता है। लेकिन यदि आप हजार बार उछालेंगे तो आप जो पैटर्न देखेंगे वो देखेंगे कि 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप वहां यूज कर सकते हैं जहां पर इवेंट रिपीटेडली होती हो और आप उसको ऑब्जर्व कर पाए, तब आप उसका एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न नोट करें और वो पैटर्न कोरेस्पॉन्ड करेगा आपकी प्रोबेबिलिटी की प्रिडिक्शन से। इज इट क्लियर? तो जब हम कहते हैं कि एक प्रोटीन एक सेल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हेड और टेल में 50%, दो में से एक प्रोबेबिलिटी है, दो तरह की चांसेस पॉसिबल हैं, उसमें से एक है हेड, तो ऐसे हमने देखा कि एक सेल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ऑड कॉम्बिनेशन कितने में से एक प्रोटीन, 10^40,000, उतने में से एक। यानी इतने सारे रिएक्शन होंगे, इतने सारे अलग अलग एमिनो एसिड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब उनमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब वो एक सेल बन जाएगा पूरा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मान लिया 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पूरी अर्थ के ऊपर प्रिमिटिव ये प्रिमोडियल सूप था और वो लगभग एक मील थिकनेस का था, 1 मील, और उस पूरी सरफेस एरिया को 1 मील डेप्थ, इतने वॉल्यूम को डिवाइड किया हमने छोटे छोटे क्यूबिकल्स में, एक एक क्यूबिकल वो 1 एंगस्ट्रॉम क्यूब का एक क्यूबिकल है, 1 एंगस्ट्रॉम एक हाइड्रोजन एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा क्यूबिकल हमने एक सपोज किया कि उस हर क्यूबिकल, और ऐसा सपोज किया कि इतना ज्यादा वो इंटेंस है वो सूप, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है वो सूप कि हर क्यूब में रिएक्शन हो रहे हैं। जरूरी हर क्यूब में रिएक्शन होना, करेक्ट, लेकिन हम ऐसा प्रपोज सपोज करते हैं कि इतना कंसंट्रेटेड है वो सूप कि हर क्यूब में रिएक्शन हो रहा है, एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए। आर यू फॉलोइंग? मान लिया 1 सेकंड में 1 बिलियन रिएक्शंस होते हैं, 1 सेकंड में 1 बिलियन रिएक्शन हर क्यूबिकल में हो रहे हैं, हर क्यूब में हो रहे हैं, तो 4.5 बिलियन ईयर्स के अंदर अपनी पूरी अर्थ के सरफेस को लिया जाए, एक मील ऊंचा थिकनेस वाला सूप कैलकुलेट किया जाए, कितने पॉसिबल रिएक्शंस, कितने पॉसिबल इतने टाइम के अंदर 4.5 बिलियन ईयर्स के अंदर, जहां पर एक क्यूब के अंदर 1 सेकंड में 1 बिलियन रिएक्शन हो रहे हैं, तो कितने संभावनाएं, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशंस बने होंगे यदि सबको जोड़ा जाए, दैट कम्स टू समथिंग अराउंड 10^100 ओनली, 10^100। इतनी प्रोबेबिलिटी, इतनी चांस है आपके पास इवेंट्स को होने के, प्रोटीन के बनने के, जो अमीनो एसिड्स के जो रिएक्शन जो होने हैं मिलना है, केवल इतने चांसेस पॉसिबल। लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑड इक्वेशन कितनी है, 10^40,000। जैसे यहां पर सिक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1:2, दो में से एक, तो वहां है 10^40,000 में से एक। तो उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए हमें 10^40,000 से भी कई गुना अधिक बार रिएक्शंस हो, तब संभव है कि वो एक बार एक प्रोबेबिलिटी पर हम आ पाए। बट हमारी पूरी 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर भी इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है उस गिवन टाइम में, इस गिवन रेट से भी। तो कैसे हम लोग चांस थ्योरी को यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इसको ज्यादा समझ सकते हैं। मींस ये कहना कि जैसे एक बार सिक्के को उछाला, हेड आ गया, बोलो हेड क्यों आया, बाय चांस, सो इट डजंट कन्वे एनी मीनिंग। तो उसी तरीके से ये सब, एक सेल कैसे बन गया, इट जस्ट केम बाय चांस, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं हुआ, इट्स ए लेमैन्स आंसर, इट्स नॉट ए साइंटिफिक पर्सन्स आंसर। तो चांस थ्योरी को इसमें यूज करना कोई बुद्धिमानता नहीं है। तो हमारे कहने का विशेष तात्पर्य यह है कि हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो विचार दिया गया है कि सब कुछ केमिकल्स अपने आप बनते हैं और अपने आप केमिकल से आता है, वो तर्कहीन है, एक कॉमन सेंस की बात भी नहीं है। एक बच्चा भी इसको समझ सकता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिस्टमेटिकली काम करती है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे ही अपने आप बिना किसी पर्पज के ऐसे ही आ गई। तो हम क्यों माने, कैसे माने कि इतना बड़ा यूनिवर्स है वो बिना पर्पज के, बिना किसी के आया। ये थ्योरी आप सोचे, ऐसा मत सोचे कि हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, आप भले इसको बोलते नहीं हो लेकिन सब लोग इसी को विश्वास करते हैं आज पूरे संसार में। भले इस थ्योरी को नहीं जानते हो कि स्टैनली मुलर ने कहा है, लेकिन सब लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए तो आज सब लोगों के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, अब मैं आप यहां हैं तो आपसे पूछूं कि आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है, बताएंगे कोई? एनीबॉडी, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? जनरली एक युवा के जीवन का लक्ष्य क्या होता है आज? उनके पेरेंट्स उनको बोले हैं अच्छा जॉब लेना है, अच्छा पैसा कमाना है और अच्छे से रहना है, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन आप सोचिए तो ये विचार कहां से उत्पन्न हुआ है कि मरने के बाद हम सब खत्म हो जाता है सब कुछ। जब हम जन्म होता है तब हम आते हैं एग्जिस्टेंस में और मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। इसलिए पाप पुण्य क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसका कोई चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, इसलिए सोचो ही मत। इसलिए वर्तमान में जियो, इसलिए जो इच्छा जो अच्छा लगता है वो करो, जितना आत्मसंतुष्टि इंद्र संतुष्टि कर सकते हो वो करो। तो ये सब विचार ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं? इसी बात से कि सब कुछ केमिकल से बना है, कोई भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप हुआ है और ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा। इसके पीछे कोई पर्पज नहीं है, सृष्टि के पीछे, आपके यहां आने के पीछे, इस जगत में आने के पीछे कोई पर्पज नहीं है। सो अल्टीमेटली हम सभी इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं अगर आप गहराई से जाइए तो। ऐसा नहीं है केवल एक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये सब हमारे रक्त के अंदर घुस गया है ये फिलॉसफी। मंदिर में भी कोई जाता है भारत के अंदर आप या क्रिश्चियंस मंदिर में जाते हैं तो वो भी किस लिए? ठीक है कहते हैं कोई है भगवान, हो सकता हो पता नहीं, अगर है तो मेरे को एग्जाम पास करा देना, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मान लूंगा कि नहीं है। सी वेरी सुपरफिशियल लेवल वी आर थिंकिंग ऑफ गॉड। लेकिन हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि वास्तव में क्रिएटर है तो फिर कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है ये समझना कि वो कौन है, हम कौन हैं, हम क्यों यहां आए हैं, पर्पस क्या है। फिर हमारी पूरी जीवन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, भगवान के फिर आदेशों को सुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ इंडिया है गवर्नमेंट, तो यहाँ गवर्नमेंट के लॉज हैं, तो तुरंत नागरिक, तो आपको पढ़ाया था नैतिक शास्त्र कि क्या क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, ट्रैफिक में जा रहे हैं आप बाइक लेकर के, ट्रैफिक के नियम को नहीं जानते हैं तो क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी आपको। तो उसी प्रकार से अब हम इस संसार में रह रहे हैं और यदि ये नहीं जानते हैं कि संसार के नियम क्या हैं, प्रकृति के नियम क्या हैं, भगवान के नियम क्या हैं, तो आप कोई गलती करेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि हम तो जानते नहीं थे इसलिए हमारा कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ट्रैफिक के नियम नहीं जानते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं तो आपको पुलिस छोड़ देगी, और बेचारा नहीं जानता था ट्रैफिक के नियम। आपको जानना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है जानना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं जानते थे। तो उसी प्रकार से ये जानना कि भगवान कौन है, उनके नियम क्या हैं, प्रकृति के नियम क्या हैं, कर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं, बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं, बिना जाने कि क्या परिणाम होने वाला है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका आगे क्या होने वाला है, ये जाने बिना हम जी रहे हैं, बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं। और इसीलिए लोग परेशान हैं, जब कुछ भी होता है तो फिर सिर फोड़ते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, आपने कब जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों कब होता है। तो इसलिए ये टॉपिक के पीछे हमारा जो आशय है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सब विज्ञान हमारे शास्त्रों में पूरी तरीके से समझाया गया है। इसके ऊपर अलग ही टॉपिक हम लोग लेंगे कि वैज्ञानिक विधि से हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि सृष्टि का स्रोत क्या है, लेकिन शास्त्रों की विधि से हम समझ सकते हैं कि सृष्टि का उत्पन्न ये कैसे उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है। तो इस सब के ऊपर किसी दूसरी कक्षा में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वर्तमान के लिए केवल आज की कक्षा का जो सार है कि साइंटिस्ट लोग जो प्रोक्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ केमिकल से आया है, सब इवोल्यूशन से आया है, ये सब केवल हाइपोथेसिस है जो अनप्रूव्ड है और जो तर्कसंगत भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये एक्चुअली साइंटिफिक भी नहीं है, ये विचार कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है इस हाइपोथेसिस के पीछे, लॉजिकल नहीं है ये प्रोपोजिशन, इलॉजिकल प्रोपोजिशन है, तो फिर क्यों हम लोग इसको स्वीकार करें। तो इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अभी इस विषय में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा उठी है इसको सुनने के बाद? प्रश्न नहीं है लेकिन कुछ कुछ हलचल हुई है मस्मिक नहीं, प्रसाद तो मिलेगा चिंता मत कीजिए, लेकिन थॉट शुड बी प्रोवोक्ड, सोचना शुरू करना चाहिए, डल नहीं बने रहना चाहिए, बस आ गए हैं डिग्री पास कर लेनी है फिर एक जॉब कर लेना है और फिर ऐसे ही जीवन जी लेना है और फिर मर जाना है, नहीं, उत्साही होना चाहिए जानने के लिए सत्य क्या है, परम सत्य क्या है उसको जानने के लिए उत्साही होना चाहिए। है किसी का प्रश्न? नहीं, ओके।
भगवान कहते हैं अहम बीज कदा पिता, सृष्टि सृष्टि के द्वारा बजे उत्पत्ति दे
हैं, सृष्टि के द्वारा,
ये द्वारा शु कहते
हैं इसको, अहम बीज प्रति, मैं सबका बीज हूं, कि सबके आदि स्रोत भगवान है, जैसे बीज स्रोत है ऐसे भगवान कहते हैं सबका बीज मैं हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, जन्मादियस्यतः सब कुछ उत्पत्ति मेरे से हुई है, प्रकृति उसका माध्यम है, पर प्रकृति भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, है? प्रकृति किसको
किसको मानना चाहिए?
मानने की बात नहीं, प्रकृति प्रकृति है, भूमि अपन वायु खम मनो बुद्धि रे बचा पंच महाभूत और तीन सूक्ष्म उसको मिलाकर के प्रकृति। हरे कृष्ण।